हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखा अरविंद नेत्रा विश्रांतरं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यांतं न विदो सुरासुरगणा देवायतस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में प्रवेश कर गए हैं तो समस्त द्वारिका वासी उनके स्वागत के लिए एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार से भगवान से मिल रहे हैं और द्वारिका की स्त्रियां छतों पर खड़ी होकर भगवान के मुख कमल को के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुई हैं, जो अत्यंत ही स्नेह और प्रेम के साथ भगवान को देखने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुई हैं। तो उनके विषय में श्लोक नंबर 25 में सुत गोस्वामी ने अत्यंत सुंदर बताया, नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारिकाओं का साम, भले ही द्वारिका वासी भगवान को नित्य निहारते रहते थे, देखते रहते थे, परंतु न वितृप्यंति ही दृश्य, उनको देखने से नेत्र कभी तृप्त होते नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेयो धामांगम अच्युतम, जो श्री है, जो वैभव है, जो शोभा है, जो समस्त ऐश्वर्य सौंदर्य है, उसने भगवान के अंगों में ही अपना आश्रय बना दिया है, शोभा का निवास है हमारे कृष्ण के अंगों में। तो उनके एक एक अंग को निहारते भक्तजनों की कभी प्यास बुझती नहीं है। उसी बात को विशेष विस्तार से आज सुत गोस्वामी श्लोक नंबर 26 में बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान समस्त सौंदर्य के आघार हैं, क्योंकि भगवान के समस्त अंगों में समस्त सौंदर्य ऐश्वर्य और शोभा ने प्रवेश किया हुआ है, इसलिए भगवान के कुछ विशेष अंग, जितने भी अंग हैं भगवान के सारे अंगों में कुछ विशेष व्यक्तियों ने सदैव भगवान के अंगों पर अपना डेरा जमाया हुआ है। मतलब कुछ विशेष व्यक्ति सदा भगवान के कुछ अंगों पर मंडराते रहते हैं। उनके विषय में अत्यंत सुंदर बता रहे हैं श्लोक नंबर 26 में, कृपया मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं, श्रीयो निवास यस्यारा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणा पदाम्बुजं श्रीयो निवासो यस्यारा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं श्रीयो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं। सुत गोस्वामी कहते हैं, श्रीयो निवास, श्रीयो, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ स्त्री है, सबसे सौभाग्यवती है, सबसे धनी है, सबसे सुंदर महिला जो भगवान की सृष्टि में है वो है श्री, वो है लक्ष्मी जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि वो सुंदरता की, धन की, सौभाग्य की देवी जो है, श्रीयो निवासो यस्योर, यस माना जिसके, उर, उर माना वक्षस्थल, जैसे हम देखते हैं भगवान के वक्षस्थल पर श्री चिन्ह है, श्री वत्स है, तो उसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि श्रीयो निवासो यस्योर, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी ने डेरा डाल दिया है, वो हटती नहीं कभी भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर, किधर जाती नहीं है। वास्तव में भक्तों, ये कहा जाता है संसार में कि महिलाओं के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन सबसे बुद्धिमान महिलाएं ये, जिन्होंने भगवान के हृदय पर कब्जा किया हुआ है। वास्तव में संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भगवान के हृदय पर राज तो स्त्रियों का ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुत गोस्वामी बता रहे हैं, श्रीयो निवासो यस्योर, जिनके वक्ष स्थल पर श्री का निवास है, श्री ने डेरा डाल दिया हुआ है, जो कि संसार की सबसे सौभाग्यवती स्त्री हैं, उनका डेरा कहाँ पर है? भगवान के वक्ष स्थल पर। और पानपात्रम मुखम दृशम, पानपात्रम मतलब जो व्यक्ति बहुत पानपात्र मतलब जल का घड़ा भगवान, या जो फिर रस का पान करना चाहते हैं। रस अभी भगवान का जो मुख है वो रस से भरा हुआ है, यानी कि इतना, इसका कहने का अर्थ ये है कि भगवान के मुखमंडल को देखने जो नेत्र हैं वो सदैव एक सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं। अब ये जो दृश्य है वो सांसारिक दृश्य क्या होता है, वो देखते देखते जी भर जाता है, परंतु भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है कि समझो एक बहुत बड़ा समुद्र है रस का, तो नेत्र जो जिनके नेत्र ऐसे सुंदरता को देखने के लिए व्याकुल हैं, वो नेत्र तो भगवान के मुखमंडल से हटते नहीं है। जैसे कहते हैं हीरे की कदर जौहरी को पता होती है, उसी प्रकार भगवान के सौंदर्य को केवल उनके भक्त ही जानते हैं। तो वास्तव में सुंदरता का पान करने की दृष्टि जिन भक्तों के पास होती है, जो वास्तविक सुंदरता को निहारने की इच्छुक होते हैं, वो भक्त तो सदैव उन भगवान के चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर अपने नेत्र जमाए रहते हैं। वो अपनी दृष्टि भगवान के मुखमंडल से कभी हटाते नहीं है। यानी कि श्री जी का निवास कहाँ? भगवान के वक्ष स्थल पर। और भक्तों के नेत्रों का निवास कहाँ? जो रस का पान करना चाहते हैं उन के नेत्रों का निवास भगवान के मुखमंडल पर। और आगे कहते हैं बाहवो लोकपाला नाम, बाह मतलब भुजाएं, लोकपाला मतलब प्रशासित देवता। इस संसार में जितने भी श्रेष्ठ देवता हैं, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जितने भी देवता हैं, सारे देवता भगवान की भुजाओं का आश्रय लेते हैं। जब भी उनके पास कोई संकट आता है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है, वो डायरेक्ट से भगवान का ताहिमाम भगवान हमारी रक्षा की, मतलब भगवान की भुजाओं में इतना बल है कि जो लोकपाल हैं, जो समस्त लोकों का पालन करने वाले देवता हैं, वो भी भगवान की भुजाओं का सहारा लेना पड़ता है उनको भी। और भगवान के आगे कहते हैं सारंगाणं परां भुजं, तो भले ही श्री जी ने वक्षस्थल पर कब्जा कर दिया, जो सुंदरता को जो सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं उनके नेत्रों ने भगवान के मुखमंडल पर डेरा जमा लिया, सारे लोकपाल अर्थात सारे देवताओं ने भगवान की भुजाओं का आश्रय ले लिया, परंतु जो वास्तव में सारंगाणम है, जो भक्त हैं, जो किसी वस्तु के विषय में कुछ कहते या गाते हैं, तो वो वास्तव में जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, जो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़े ज्ञानी होते हैं। वास्तव में क्या, भगवान ने कहा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरा भक्त होता है वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है। तो वो कहाँ पर, उनके लिए क्या प्रिय है? पादाम भुजम, वो भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त उनको कुछ और दिखता नहीं। तो भगवान के चरणों की महिमा के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना कुछ कहते हैं, बस भगवान के चरणों की महिमा करते रहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के चरणों की इतनी महिमा है कि यदि हम एक बार उन चरणों की शरण ले लें तो फिर संसार की सारी कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफें, जो कुछ भी है जो हमें कष्ट पहुंचाता है, वो सब भगवान की शरण लेने से खत्म हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म हो जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, खाली एक बार भगवान के शरण को पकड़ लिया जाए, भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए। अनुवाद, भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है, उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायत रहते हैं, उनकी भुजाएं प्रशासित देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणस्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग खोजती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजार हजार लक्ष्मियों के द्वारा भक्ति भाव सहित सेवित होते हैं। यह धाम भगवान का दिव्य घर है जहाँ सारे वृक्ष कल्पत्रु हैं और जहाँ के प्रसाद पारस मणि के बने हुए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार वैदिक साहित्य में कहा गया, क्योंकि लोगों को भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रकार ना की ओर आकर्षण होता है। कुछ लोग किसी प्रकार का भोग चाहते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार का भोग चाहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक होते हैं। तो उनके विषय में वैदिक साहित्य क्या बताता है, ब्रह्म संहिता बताते हैं 5.29 में, चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभव सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। कि भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि धाम है और वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। हजार लक्ष्मियों के द्वारा भगवान भक्ति भाव सहित सेवित होते हैं। यह धाम भगवान का दिव्य घर है। वहां पर क्या है, सत्मसु कल्प वृक्ष, वहां पर सारे वृक्ष कल्पत्रु हैं और जहाँ के सारे प्रसाद यानी जितने भी वहां पर बिल्डिंग्स हैं, जितने भी वहां पर बड़े बड़े घर हैं, वो पारसमणि के बने हुए हैं। तो भगवान का इतना वैभव है कि वहां पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते हैं। लक्ष्यावितेषु सुरभिर अभिपालयन्तम्, भगवान को बहुत अच्छा लगता है गौ चराना। भगवान का कार्य है, अगर कोई पूछे भगवान का काम क्या है तो बोलो क्या काम करते हैं, वो गैया चराते हैं और क्या करते हैं, तो अपने धाम में सुरभि गायों को चराते हैं। यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जब हम भगवान के चरणों की ओर ध्यान करेंगे तो हमें स्वतः पता चलेगा कि वास्तव में इन चरणों की सेवा लक्ष्मी महारानी सदैव करती है। लेकिन निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर दृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखें। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में यदि आप रस को चखना चाहते हो, यदि सौंदर्य का पान करना चाहते हो, तो आपको भगवान के मुखमंडल को निहारना चाहिए। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आधार है जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है और जिसे वे पक्षियों का कल कुंजन कहते हैं। वे भगवान की मरमर ध्वनियां हैं, विश्व की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं और राज स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह जानता है कि
हितों की रक्षा कर सक और वह जनता के हितों की रक्षा कर सकते, यानी कि अगर जो राजा होते हैं, जैसे देवता भी प्रशासक होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अभी देखो, देवता लोग को जब कष्ट होता है तो वो भगवान की सुरक्षा में जाते हैं, यानी कि देवता कितने अक्लमंद हैं, उनके पास कितनी बुद्धि है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व केवल भगवान कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जब राजा बनता है, तब उसके ऊपर जब कोई ना संकट आता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, यानी कि प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और जनता के हितों की रक्षा कर सकते। लेकिन अगर वो वास्तव में आदर्श राजा बनना चाहता है, तो उसे भगवान का श्रद्धालु भक्त बनना चाहिए, फिर सारी जनता सुरक्षित होती है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को दुसह्य दुख सहने पड़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं, राजतंत्र के वो प्रतीक होते हैं, वो सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरे तथाकथित दुखों को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, परंतु जब तक भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, तब तक जीव को असहनीय दुस्सह दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रशासक गण भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वो भी अपने आप को भगवान की संरक्षण में दे दे, तो वो स्वयं भी सुरक्षित हो जाएंगे और जनता भी। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। जो बता रहे हैं यहाँ पर कि सारंगाणाम पदाम्बुजम, तो भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की लीलाओं का, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, उनको सारंग कहते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर भगवान के चरणों की महिमा श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं अत्यंत ही सुंदर तरीके से, कि शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। अब यहाँ पर भगवान के चरण को कमल कहा जाता है, और जो कमल होते हैं उसके ऊपर कौन मंडराती है, मधुमक्खी। तो भक्त का हृदय मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, जो सदैव भगवान के चरण कमलों की ओर मंडलाती रहे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि कमल में एक प्रकार का मधु होता है, जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं, जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। वे कहते हैं, हे मेरे कृष्ण भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है, जो कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आधार हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों की नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते, फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति मेरी अनुरक्ति वास्तविक नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को अपने चरण कमलों में स्थिर कर लीजिए, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर करता रहूं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, के भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उनके उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रहती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान ऐसे विनम्र भक्तों पर आश्रित रहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो भगवान कितने सुंदर हैं ये तो हमने सुना। अब सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि द्वारिका के राजपथ पर चलते हुए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो अकल्पनीय, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे ही यहाँ पर भगवान की उपमा दे रहे हैं, उपमा देते ना, जैसे ऐसे लग रहे हैं। अब उनके पास वो शब्द नहीं है तो अकल्पनीय उपमा दे रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं। मानो ऐसे बता रहे हैं जैसे सूत गोस्वामी फोटो निकाल के बता रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हम सब सूत गोस्वामी के शब्दों में अपने कर्णों के द्वारा भगवान की उस सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सूत गोस्वामी कैसे देख सकते हैं भगवान को। सूत गोस्वामी उस समय थे क्या? तो आचार्यगण बताते हैं कि जो कथावाचक होता है ना, जो कथा को बता रहे होते हैं, वो भी उस कथा के भीतर प्रवेश करके एक सीट ग्रहण करते हैं, है ना। और वो ऐसी सीट होती है, वो ऐसी सीट को चुनते हैं ताकि वो ठीक ठीक से भगवान के दर्शन कर सके। ना केवल वो भगवान के दर्शन करते हैं बल्कि वो सारे जितने भी वहां पर पात्र होते हैं सबको सबके दर्शन करते हैं। जैसे अभी सूत गोस्वामी बताएंगे कि भगवान कैसे घनश्याम की तरह दिख रहे थे, सात्यकी और उद्धव किस प्रकार चामर डुला रहे हैं, अर्जुन कैसे छत्र पकड़े हुए हैं, तो वहां पर जो स्त्रियां हैं, भगवान का पीतांबर कैसा लग रहा है, भगवान की माला कितनी सुंदर लग रही है। हर एक वस्तु को अत्यंत ही सुंदर रीति से यहाँ पर सूत गोस्वामी बता के हमें भगवान के दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए श्लोक नंबर 27। सीता पत्र व्यजन रूपस्कृत प्रसून वर्ष अभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया भवो घनो यथार्को डुपचाप वैद्युत सितात पत्र व्यजन रूपस्कृत प्रसून वर्ष अभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया भभो घनो यथार्को डुपचाप वैद्युत सितात पत्र व्यजन रूपस्कृत प्रसून वर्ष अभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया भभो घनो यथार्को डुपचाप वैद्युत। वे कह रहे हैं सितात पत्र। सितात पत्र किसको बोलते हैं? जो एक छाता होता है, जो धूप से बचाने के लिए जो अर्जुन छाता पकड़ के खड़े हैं उसके विषय में कहते हैं, वो श्वेत छाता है भगवान के ऊपर। और व्यजनर कहते हैं चावर को, दो चावर हैं उपस्कृत वो झुला रहे हैं, कौन? सात्यकी और उद्धव, भगवान के दोनों साइड पे खड़े हैं, वो चामर डुला रहे हैं। और बाकी जितने भी नगरवासी हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रसून वर्ष अभिवर्षित पर, वो पूरे रास्ते में जितनी देर भगवान चल रहे हैं तो वो जो फूल है ना वो भी बरसा रहे हैं, वो भी ज्यादातर सब सफेद कलर के हैं। वो जो चावल डुला रहे हैं वो भी श्वेत कलर का है और जो जो उसने छाता पकड़ा है वो रंग बिरंगी है और सारा इतना वातावरण ऐसा हो रहा है कि दो साइड से चंद्रमा के जैसे दो चावल डूल रहे हैं और जो सारे फ्लावर की बारिश हो रही है वो ऐसे लगते हैं छोटी 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 ये सारे सितारे हैं वो भी चमक रहे हैं। और बिशंगवासा, भगवान ने वस्त्र कौन सा पहना हुआ है? पीले कलर का वस्त्र है जो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रहा है। अब वो जो छाता पकड़ के अर्जुन खड़े हैं तो वो तो क्योंकि सूर्य के ऊपर है ना तो उसमें से इतनी सूर्य की किरणें निकल रही हैं, एकदम ऐसा लग रहा है बहुत तेज चंद्र सूर्य चमक रहा है और इस तरफ दोनों तरफ है ना चंवर डुला रहे सात्विकी और उद्धव, तो वो ऐसे लग रहे हैं दो चंद्रमा हैं और जितने फ्लावर्स वो डाल रहे हैं जितने नगरवासी हैं वो ऐसा लगता है छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। और भगवान ने जो पीला वस्त्र पहना हुआ है वो बिजली की तरह लग रहा है और जो वनमाला और भगवान ने जो वनमाला पहनी हुई है वो ऐसे लगती है जैसे जो घनश्याम है भगवान, क्योंकि घनश्याम है और भगवान के ऊपर है ना दो इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष के सारे रंग भगवान के नीले बादल जैसे शरीर पर ऐसे दिख रहे हैं उस माला के स्वरूप में। और वास्तव में ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा, लेकिन सूत गोस्वामी कह रहे हैं घनो यथार्को डुपचाप वैद्युतम। घनो मतलब अगर कभी ऐसा हम इमेजिन करें कि ऐसा बादल हो यथा जिस प्रकार अर्क यानी ऊपर उसकी तेज तेज सूर्य चमक रहा हो, उडप दोनों साइड पर चंद्रमा चमक लहरा रहे हैं ऐसे चंचल चंद्रमा जिस प्रकार, क्योंकि वो दोनों चंवर ऐसे हिला रहे हैं ना तो चंद्रमा दोनों डांस कर रहे हो, और चाप यानी इंद्रधनुष जो है वो उसके वनमाला जैसे भगवान के गले में बैठी हुई है तो पूरा इंद्रधनुष के कलर उनके उस घन बादल के ऊपर हो वैद्युता, और जैसे वस्त्र भगवान ने पीले कलर का पहना हुआ है वो एक बिजली की तरह है। तो ये बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तो धूप से बचाने के लिए उनके सर पर श्वेत छाता ताना था। श्वेत पंखों वाले पंख यानी चंवर अर्धवृत्ताकार में झूल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम भादर एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने से चांदनी नगण्य बन जाती है और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर का रंग नवीन मानसून बादल के जैसा है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा सितारों से और पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की जा रही है। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वार समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति का चिंतन करें। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी अनुपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है, लेकिन द्वारिका के मार्गों से उनकी गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। तो कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं। अभी देखिए ये क्या उपमा दे रहे हैं कि जैसे एक सांवला बादल हो, भगवान श्री कृष्ण को एक सांवले बादल से बता रहे हैं और उनके ऊपर जो छत्र है वो सूर्य के समान है। अब जब बादल होता है तो सूर्य कहाँ होता है, सूर्य तो दिखता नहीं है ना, लेकिन बादल के एकदम ऊपर तेज तेज चमक रहा है सूर्य और उसके दोनों तरफ क्या है, चंचल चंद्रमा। हालांकि सूर्य जब प्रकाशमान होता है तब भी चंद्रमा होते हैं, लेकिन चंद्रमा कभी भी आसमान पे दो नहीं होते है ना, सितारे बहुत सारे आते हैं बट चंद्रमा तो एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं दो दो चंद्रमा। और दूसरी बात ये कि जब सूर्य होता है तो चंद्रमा की चंद्रमा दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं वो भी नाचते हुए झूल रहे हैं, क्योंकि दोनों चावल तो चंद्रमा नाचते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं तब वो नहीं होता, रेम्बो होता ना, जो उस समय इंद्रधनुष वो रेम्बो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर जो भगवान की गले में वनमाला फूलों की रंगीन फूलों की माला लगी हुई है वो रेम्बो की तरह दिख रही है। और दूसरा कि जिस समय सूर्य होता है उस समय सितारे तो दिखते ही नहीं है, लेकिन जो फ्लावर्स फेंक रहे हैं, सब पुष्प फेंक रहे हैं, वो सब चमचमाते हुए सूर्य की तरह दिखते हैं। और जब आसमान पे बिजली चमकती है तो वो थोड़ी देर के लिए आती है और चली जाती है। वैसे तो जब सूर्य चंद्रमा इत्यादि इतनी रोशनी होती है तब बिजली नहीं चमकती, लेकिन अगर बिजली आती भी है तो वो स्थिर बिजली नहीं होती है, लेकिन भगवान का पीताम्बर इस तरह से चमक रहा है जैसे स्थिर बिजली हो। तो ये बता रहे हैं कि ऐसी उपमा है श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आकाश की ऐसी सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। अब इनको कैसे बताया जाए, क्योंकि भगवान इतने अचिंत्य शक्तिवान हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब भगवान क्योंकि हमारे सामने हैं और हमें भगवान के विषय में बताना है साधारण भौतिक लोगों को, तो भौतिक वस्तुओं के विशेष अनुसार ही बता सकते ना कि भौतिक तो भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो उनकी तुलना सुत गोस्वामी प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त और क्या करके बताएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब उनके पास दूसरे शब्द नहीं है तो इन्हीं शब्दों में समेट कर भगवान को अत्यंत ही सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के इतने सुंदर दर्शन करके कृतार्थ होकर अपने जीवन को सफल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।